आदरणीय डॉक्टर हुकुम चंद जी भारे लिखे समय सार
गाथा 38 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए और क्या चकार के चित्त भावाए भावाए सर्वभावन।
क्या ख्यान माला में आज का प्रवचन पंडित श्री प्रकाश चंद जी।
समय सार परमागम की 38वीं गाथा चल रही है, पेज नंबर 360 तीसरी लाइन से। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाने और कारण पाकर स्मरण आने पर प्राप्त करने का उदाहरण देकर आचार्य देव यह समझाना चाहते हैं कि सोना है तो अपने पास ही, अपनी मुट्ठी में ही, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस मुट्ठी खोलकर देखना ही है। उसे प्राप्त करने में मुट्ठी खोलकर देखने भर की देर है। इसी प्रकार आत्मा भी है तो अपने पास ही, पास ही क्या, हम स्वयं ही आत्मा ही तो हैं। अतः उसे जानने के लिए, खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस पर पदार्थों पर से दृष्टि हटाकर निज को निहारना ही है। अमृतचंदाचार्य देव ने इस गाथा की टीका में आरंभ करते हुए एक वाक्य लिखा है कि जैसे कोई आदमी अपनी मुट्ठी में सोना की अंगूठी रखकर और भूल गया, मुट्ठी खुद हाथ से बंद कर ली और अंगूठी कहाँ है, और सारी दुनिया में खोजता है, इससे पूछता है, उससे पूछता है और मुट्ठी को ऐसे बंद रख। आप कहेंगे आचार्य देव को ऐसा क्या उदाहरण मिला, ऐसा उदाहरण देकर वो ये बताना चाहते हैं कि भूल कितनी स्थूल है कि दुनिया को हंसी आए। क्या भूल इतनी मोटी, इतनी स्थूल कि आधे पागल की भी समझ में आ जाए, और अनादि काल से इसी भूल के कारण तूने अनंत दुख उठाए। विचार तो क्या करा, ऐसा शब्द पड़ा है, शब्द पड़ा है वो मुट्ठी में विन्यस्त तामी कर विस्मृत तामी कर, ऐसा शब्द है ना, इसमें है ना। देखो निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामी कर अवलोकन न्यायेन, ये शब्द है। देखो अब इसमें संस्कृत निज, निज माने अपना, और कर माने हाथ, निज कर हो गया ना, और विन्यस्त माने रखा हुआ खुद ही अपने हाथ से, निज कर विन्यस्त, और फिर विस्मृत माने भूल गया, मुट्ठी बंद कर ली और भूल गया, और ऐसा चामी कर माने सोना, और उसको फिर ऐसा खोल के देख ले, इसका नाम अवलोकन, न्याय है। एक न्याय, न्याय माने ऐसे सैकड़ों फ्रेज है संस्कृत में, ऐसे बोलते हैं ना अपन, कौआ का बैठना और ताल वृक्ष का गिरना, हमारे सिर का मुड़ाना और ताल वृक्ष का उसके ऊपर गिरना, इस न्याय से, ऐसे न्याय कहलाते हैं ना, सात ताली न्याय। हमने उसी दिन सिर मुड़ाया था और उसी दिन हमने जाकर के ताल वृक्ष के नीचे आराम किया, और उसी दिन आगे कौआ एक ताल वृक्ष पर बैठा, ताल वृक्ष का फल इतना मजबूत होता है कि 10 आदमी उस पर झूम जाए तो भी नहीं टूटता है, नारियल से भी ज्यादा मजबूत लगता है, और उसमें कौआ जरा बैठा और वो गिर गया और सीधा हमारे सिर पे गिरा और हमारा सिर फूट गया। अब बोलो सिर कैसे फूट गया, तुमने हमारी क्या गलती थी, तो उसे बोलते काक तालील न्याय, इस न्याय से मेरा सिर फूट गया। ऐसे बहुत सैकड़ों फ्रेज है इस टाइप के। अपन बोलते ना बिल्ली का उचकना और छींका का टूटना, ऐसा हुआ ये, ऐसे ही निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामी कर अवलोकन न्यायेन, न्यायिल का मतलब यह है ऐसी कोई घटना घट जाए आत्मा का अनुभव ऐसा है कि कोई अपने मुट्ठी में रख गया भूल गया अब खोजता फिरता है मुट्ठी खोली नहीं जा हो गया सम्मत दर्शन इतना सरल है क्या ये शब्द कह के बताना चाहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कितनी सरल है सर्टिफिकेट बात की बात नहीं है तेरे को प्रोत्साहित करने की बात है मैं एक बात कहता हूँ मैं कल दादा को कही थी घूमते वक्त कि पूज्य गुरुदेव श्री इतने महापुरुष थे इतने सहज सरल और तत्वज्ञ आत्मज्ञानी थे उन्होंने सारी जिंदगी में दो तीन आदमी को सम्यक ऋषि घोषित किया एक चंपाबेन को एक शांताबेन को और एक दीपचंद सेठिया को निहाल जी मेरे मरने के बाद उन्हें पता चला उन्हें निहाल जी तो मर गए तो बाद में उनकी किताब मिताब आई और देख के वे कहने लग गए उनके जिंदा रहते तो किया ही नहीं तो तीन में से दो का तो वापस लेना पड़ा उन्हें दीपचंद सेठिया का नहीं 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 है नहीं है शांताबेन का नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। क्या इसका मतलब है कि घोषित करना सर्टिफिकेट बांटना कितना अनप्रैक्टिकल है अब बाद के जिन लोगों ने बांटा अब उनकी क्या दशा हो रही वो सब आप देख ही रहे हो जिन्हें दे रहे दे कहते हमें नहीं चाहिए हम नहीं है। तो, क्या यूनिवर्सिटी कहती तुम हमारी पीएचडी का प्रमाण पत्र ले जाओगे तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पीएचडी का प्रमाण पत्र कोई तो मेरे से दीक्षा ले ले तो मैं आचार्य बन जाऊं कोई मेरे से सम्यक दर्शन ले ले और मैं उसे घोषित कर दूं तो कम से कम मैं तो घोषित हो ही जाऊं कि मैं हूं क्यों मेरे घोषणा करने से दूसरा हो जाएगा तो इसका मतलब बहुत तो कहने की जरूरत ही नहीं रही कि मैं हूं कि नहीं आचार्य कहते क्या इनकी क्या जरूरत है कैसे दुनिया को कैसे पता दुनिया को पता चलने की क्या जरूरत है दुनिया को पता चलने की तब जरूरत है जब इतना धर्मात्मा जीव हो जाए कि वो अंदर से नग्न दिगंबर हो जाए किसी कमंडल लेके निकलेगा सारी दुनिया को पता चल जाएगा अब उसके पहले पला पता चलने की क्या जरूरत क्या है कृष्ण कुमार जी दो सम्मति सी आपस में सामने आमने भिड़ रहे उठा के देख लो दो मोक्ष गामी इंद्रजीत और कुंभकर्ण यहाँ थे और रामचंद्र जी वहां थे क्यों अठाईस सम्मतियों का भी बाहुबली और भरत दो ही थे और एक दूसरे के जान की बाजी के प्यासे हो गए अब ये दिखाना है क्या है उसका मतलब सारे पुराण भरे पड़े हैं कि नहीं पड़े जिसने तरत्र मोहे बस लेस न संयम ऐसा लिखा ना और ऐसा लिखा कि गोमर सार में नो इंद्रिय सुविद नो जीवे तास रे थे थसे बापी अब इंद्रियों से विरक्त नहीं है रक्तसावर की हिंसा से भी विरक्त स्थावर दोनों की हिंसा से विरक्त नहीं है अब उसे धर्मात्मा घोषित करके क्या करोगे लोग किस कसौटी पे कसेंगे उसे और पंचम काल में छायक सम्मति होते नहीं और उपसम और क्षयोपम वाले होते हैं तो उसके लिए बनारसी दास ने ऐसा लिखा है जे जे पंडित उपसमी क्षयोपमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है क्षण माही आग माही क्षण माही पानी माही क्षण माही सम्यक और क्षण में मिथ्या तो कलाभासी है क्षण में मिथ्या तो क्षण में सम्यक तो कलाभासी है लोहार की संडासी होती ना जैसे वो गर्म लोहे को निकाल करके अग्नि में से उठाता है और फिर उसे पकड़ करके पीटता है तो क्या होता है कि लोहा जो है वो गर्मी का कुचालक है मतलब उसमें गर्मी पास होती है लकड़ी में नहीं होती ना पास तो वो यद्यपि वो मुख डाला था उसने उसमें वो भी लाल हो गया लेकिन यहां भी जो जहां पकड़ा है वो भी गर्म हो जाता है थोड़ा गर्म होता है लेकिन हो जाता है तो इसके लिए जब वो द्वारा उसे अग्नि में डालता है उस लोहे को, तो संन्यासी को निकाल के पानी में डाल देता है जिससे कि वो ठंडी हो जाए, उसे पकड़ने में सुविधा रहे। तो लोहार की संन्यासी जैसे क्षण में आग में और क्षण में पानी में, एक क्षण में तो आग के मुंह में ठूस देता उसका मुंह को और एक क्षण में पानी में ठूस देता है। भाई जितनी दफे आग में डालेगा, कई दफे पानी में डालेगा, क्योंकि गर्म हो गई तो ठंडी करना है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, ऐसे ही उपसमो क्षणोपमी पंडित, मैंने सम्य ऋषि जी पंडित शब्द का प्रयोग किया है भैया सम्य ऋषि के लिए। आई कह भाई चलिए, हमको कौन सा पंडित बनना है, हमें तो ज्ञानी बनना है। ये पंडित तो ज्ञानी होते ही नहीं, और ज्ञानी मैंने पंडित के साथ में अज्ञानी की व्याप्ति हो जैसे। लेकिन तेजे पंडित उपसमी क्षयोपमी, उपसम सम्य दृष्टि क्षयोपम सम्य दृष्टि को पंडित शब्द लिखा के नहीं लिखा। इनकी अवस्था तो लोहार की संन्यासी है, क्षण माई आग माई, क्षण माई पानी माई, क्षण माई मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। अब सुबह सम्मान ऋषि हो जाएगा, दोपहर में सुमित्रा ऋषि हो जाए, शाम को फिर सम्मान ऋषि हो जाए, तो क्षण में लिखा। मैं तो सुबह दोपहर शाम बोल रहा हूँ भाई साहब, दिन में 50 बार सम्मान ऋषि हो और 50 बार मिथ्या ऋषि हो जाए। अंतर मुहूर्त ही तो है ना, किस काल गजन काल अंतर मुहूर्त है ना, तो 24 घंटे में कितने 24 अंतर मुहूर्त हो जाएंगे ना, 24 में 30 अंतर मुहूर्त हो जाएंगे, तो 30 दफे हो सकता है। तो कोई जिंदगी की गारंटी है कि आज हुआ है तो 50 साल तक रेगुलर कायम रहा? क्यों बोलवा, जब रेगुलर की कायम रहने की गारंटी नहीं है तो एक एक मिनट में दोगे बदलोगे लोगे लोगे तो क्या मतलब है उसका है? मैंने वो भी आज एज ए सर्टिफिकेट यूज के होने लग गया, जैसे बताया ना एम ए PhD शास्त्री न्यायाधीश ऐसे आचार्य उपाध्याय ये होने लग गए, अब वो सम्य दृष्टि भी एज ए डिग्री यूज होने लग गया है। आचार्य कहते भाई वो तो कितना सरल, उन्होंने शाम को चर्चा शुरू की थी तो कल तो हो नहीं पाई, अभी फिर आज शाम को करेंगे। अब सोचा शाम को यह है कि 9:30 बजे खत्म कर दें, क्योंकि 10 बजे तक लोग अपने घर पहुंच जाएं और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए समय मिले। इतने 11:11 बज जाते हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ने को समय नहीं मिलता और अब तूफान भी आने लग गया है। इसलिए किया है कि पहला व्याख्यान ठीक 7:45 बजे शुरू हो जाएगा और 8:30 पे खत्म हो जाएगा, दूसरा 8:30 से 9:30 पे। वो तो क्या वो 10-5 मिनट तो बीच वाले ही ले लेते हैं ना, छाबड़ा जी वगैरह, तो ऐसे करके दोनों को मिला मिलू करके 7:45 घंटा के समझो दोनों, ऐसे 9:30 पे खत्म कर दें, 10 बजे तक लोग पहुंच जाए अपने घर पर और बाकी के लोग अपनी पढ़ाई करें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उस बात पर आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों के हाथ में है, कहीं खाली पंडाल में तो शुरू कर नहीं सकते है? आप लोग 7:30 बजे का विचार करेंगे, आके यहाँ बैठेंगे तो 7:45 बजे शुरू हो पाएगा। क्योंकि तो किसी वक्ता से कहने के तुम तो शुरू कर दो, कोई आए चाहे नहीं आए, कोई आए चाहे नहीं आए, ये शोभा की बात नहीं है। क्यों बंदी जी, अरे थोड़े कार्यक्रम कम रखो यदि नहीं है, ज्यादा तकलीफ होती है तो है, लेकिन जो होना वो सब व्यवस्थित ढंग से होना। अब यहाँ तो आचार्य क्या कहते हैं देखो, क्या निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामी कर अवलोकन न्याय ने, सम्मदासन की उत्पत्ति कैसे होती है कि इस न्याय से होती है बोलो तो, सह साधक प्रथम साध्य इस न्याय से है। देखो खोलो मुट्ठी हो गया समझे, अरे वास्तव में ये तो बहुत कठिन लिख दिया आचार्य ने, क्योंकि यहाँ तो मुट्ठी खोलनी है, यहाँ वहां तो खुली खुलाई मुट्ठी है। क्या क्या समझ रहे मोदी जी, त्रिकाली ये तो अभी सोना जो है मुट्ठी के अंदर बंद है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और तू मुट्ठी खोलेगा तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन तेरा त्रिकाली जो भगवान आत्मा किसी मुट्ठी में बंद नहीं है,
वो तो चौड़े रास्ते पर खुला पड़ा है, सूरज जैसा चमक रहा है, क्या बस तेरे को आंख खोलने की देर है, मुट्ठी खोलने की देर नहीं है। बोलो क्या, हमें सूरज दिखाई दे, पट्टी बांध दी आंख में, हमें सूरज दिखाई नहीं देता, ऐसे हाथ लगा करके सूरज की तरफ मुंह करके बैठा है, क्या करना है कि सर ऐसी आंख करना है, सूरज तो सामने जगमगा रहा है, क्या भैया असम दर्शन क्या चीज है? तेरा जो भगवान आत्मा है ना, जो सदा विद्यमान है, जैसे हाजर हजूर बोलते, हाजर हजूर माने, हाजर माने सदा विद्यमान और हजूर माने भगवान आत्मा, हाजिर है, समझी है कि नहीं? ऐसा तेरा जो भगवान आत्मा है और तेरे ज्ञान की पर्याय में ये ताकत है, छेनी पंचेंद्री है ना तू, छोषम ज्ञान की पर्याय में, ऐसे ही छोषम ज्ञान की योग्यता वाले जीवों को आत्मा उतने से ज्ञान में देखने में आता है कि साहब है तो बाजार में माल तो बहुत पड़े हैं, बढ़िया से बढ़िया हीरे हैं, लेकिन मेरे पास खरीदने लायक पूंजी तो होनी चाहिए, कि है तेरे पास जितना आत्मा को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान भी तेरे पास विद्यमान है, मतलब काय की देर है? क्यों तस्वीरे खुदा हृदय के आईने में है, क्या बोलते हो अंग्रेजी कुछ होगा मुसलमान में, बस क्या है, जब चाहे गर्दन झुकाई देख ली, नजर उठाई देख ली, गर्दन झुकाई देख ली है, जब चाहे गर्दन झुकाई देख ली, उसमें है क्या, कौन सा गजब हो गया है? क्या साहब आपको लगता होगा कुछ गजब नहीं हुआ है, हमारी तो सारी जिंदगी बीत गई और हमें तो कुछ दर्शन हुए ही नहीं हुए, नहीं होता ऐसा, साधारण काम होता तो कर लेते ना, और तुमने कह दिया क्या बस एक क्षण में कह दिया गर्दन झुकाई देख ली, कोई गर्दन झुकाना आसान है? जब कभी आप रात में लेते रहते ना, वो गर्दन अकड़ जाती है, तो जरा सी झुकाओ तो प्राण निकलते हैं, अभी तुम्हारी गर्दन चल रही ना, फिर तुम कह रहे गर्दन झुकाई देख ली, गर्दन झुकाना हरेक के लिए इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात और भी तो है, गर्दन ना भी अकड़ी हो, लेकिन हम उस देश के वासी हैं, गर्दन कटा सकते हैं पर गर्दन झुका सकते हम गर्दन नहीं झुका सकते, कटक का कट जा, अंदर में ऐसा अभिमान स्वाभिमान भरा पड़ा हो तो भी गर्दन झुकाना इतना आसान है क्या? इसे तुमने कह दिया कि गर्दन झुकाई, इसमें क्या देखकर गर्दन झुकाओ, देख लो गर्दन झुकाना एक तो आसान काम नहीं है, और झुका भी दी तो देखने को क्या मिलने वाला है? तस्वीर है खुदा, खुदा की तस्वीर, खुदा के दर्शन थोड़ी होने वाले हैं, क्या देखेगा? तस्वीर, तो तस्वीर देखने के लिए हम गर्दन झुकाएं ऐसे मूर्ख नहीं है, यानी माल मिल रहा है वो बहुत कम है और कीमत जो मांगी जा रही है वो बहुत ज्यादा है, क्यों तो क्यों घबराते हो? ये तो भाई साहब उन मुसलमानों का कहना है, जैनियों का थोड़ी ऐसा कहना है, जैनी कहते हैं कि तेरे को गर्दन नहीं झुकानी है, हमारे जो ध्यान की मुद्रा है वो गर्दन झुकाने की है, सामायिक की मुद्रा जैसी है, कैसी बात है, आजकल तो ऐसी करते क्यों बंद जी सामायिक, अपनी तो ऐसी मुद्रा, मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां विराजमान है वो हमारे ध्यान की मुद्रा है, क्यों तो उसमें कहां गर्दन झुकी है किसी की, किसी भगवान की ऐसी है मूर्ति, ऐसी है सबकी, बिल्कुल बोलो संतलाल जी कैसी है मूर्ति, गर्दन झुकी तो नहीं है ना, अभी पीछे से कह रहे नजरें झुकाई देख ली, अगली नजर झुका लो, गर्दन का झुकाना, लेकिन मैं कह रहा हूं नजर कौन सी, नजर क्यों झुकाए, नीची नजर तो उसकी हो जिसने कोई पाप किए हो तो क्या करना है तेरे को कि सिर्फ उपयोग को झुकाना है, गर्दन भी अकड़ी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, आंखें भी जैसी है वैसी रहने दे, अर्धोन मिलित क्या करे, अकेले उपयोग को झुकाना है। अब तो ज्यादा कीमत नहीं है, अब तो बहुत सस्ता सौदा है कि खुदा की किसी भी तस्वीर नहीं देखूंगा मैं। तो कौन कहता तू खुदा की तस्वीर देख, तुझको तो खुद खुदा देख, तू अंदर में खुदा दिखाई देगा तू। बात तो ऐसी है, कम वक्ति इस आत्मा की ऐसी है कि खुद खुदा होकर बंदा नजर आता है। क्या है तो खुद खुदा, और लोग मैं तो बंदा, मैं भगवान तेरा बंदा, खुदा का बंदा, खुदा का बंदा, तू बंदा है कि खुदा है। यही तो कम वक्ति है हमारी कि है तो खुदा और मान रहे अपने को बंदा, पर झगड़ा तो ये है ना, तू खुद खुदा है और तू उपयोग को झुकाए तो तू जो स्वयं भगवान आत्मा है वो तेरे ज्ञान का गेय बन जाएगा, सब मदर्शन हो गया। अरे क्या है इसमें, यह कौन सी कठिनाई है? मैं तो बहुत साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि एक कप चाय पीने में जितनी कठिनाई है, सम्मदर्शन प्राप्त करने में उतनी कठिनाई नहीं है। फिर क्यों नहीं हो रहा वो शाम को ए? अरे कहाँ कसर रह गई है उसकी, चर्चा शाम को करेंगे, अभी तो क्या बात चल रही है, क्या कि कुछ नहीं, देह की क्रिया कुछ नहीं करनी, गर्दन झुकाना, नजरें झुकाना, रीढ़ की हड्डी सीधी करना, ये सब देह की क्रिया है, इससे भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा। भगवान आत्मा का दर्शन करना है तो जिसका दर्शन करना है वो भी भगवान आत्मा, वो दर्शन करने की क्रिया भी उसमें ही संपन्न होनी चाहिए, वो ज्ञान में संपन्न होनी चाहिए, वो देह में संपन्न होगी तो भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक चाय कप पीना ये कठिन है और आत्मा का अनुभव सरल है। कैसे ब्रजदत्त जी, ऐसे नहीं आएगा समझ में, आपके घर के बढ़िया रसोई सजी सजाई है, बढ़िया सब सामग्री लगी हुई है, तो गैस में लगा एक मिनट में चाय बनती है। यहाँ तो इतना कि गैस जलाना पड़ता है ना और 5 मिनट करना पड़ता है। अमेरिका में तो इससे भी सरल है मानू, वहाँ 2 नल होते हैं रसोई घर में, एक नल में एकदम खौलता पानी आता है, एक नल में बिल्कुल बर्फ से भी ठंडा पानी आता है, और एक तीसरा नल और होता है जिसमें आप जैसा खोलो जरा ऐसा कर दो तो गर्म, ऐसा कर दो ठंडा, ऐसा जरा जरा सा पावर, आप उतने आप सोचे ही नहीं सकते हैं, आपका हाथ हिल जाए इतने में तो एकदम गर्म, हाथ ऐसा हो जाए तो ठंडा। तो क्या करते मालूम चाय को, कि चाय की एक थैली आती है, उन्होंने उसे वो छन्नी में डाली और वो नल खोला गर्म पानी का, पर उसमें से वो निकाल गया वो पानी, वो चाय तैयार बस खत्म, नीचे उसमें दूध डाला था जैसा वो खोलता हुआ पानी मिला बस। अभी इंडिया में भी हो तो गया होगा बड़े बड़े लोगों के घर में, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ऐसा नहीं एक सेकंड भी नहीं हुए उबलने उबलने का काम नहीं, फ्लेंज में ऐसा ही होता पानी अलग रखा एकदम खोलता हुआ है उसमें, वो चाय की वो अलग, वो चाय की तो वो उतना भी नहीं करते हैं, वो गर्म पानी एक भर के दे देते हैं और उसमें वो एक दे देते हैं थैली चाय की, उसमें तुम ही डाल लो, चीनी की एक पैकेट देते उसे खोल के तुम उसमें डाल लो, दूध का भी एक पैकेट होता है उसे खोल के वो डाल दो, ऐसा हिलावट किया, सब चीज अलग अलग बिल्कुल इकट्ठी मिली नहीं एक सेकंड में, तो भी कहते बहुत कठिन है ऐसे नहीं चलेगा। आप यहां से कार से जा रहे हो, रास्ते में कार खराब हो जाए बेकार हो जाओ आप, कार भी बेकार हो जाए और आप भी बेकार हो जाओ, और फिर वहां आपको तड़प लगे चाय पीने की, कोई दुकान सामने नहीं हो और आपके पास कोई सामग्री नहीं हो, क्योंकि आप जहां खड़े करो वहां पर चाय मिलती है, क्योंकि आप कोई लेके चलेगा। पेट्रोल पंप एक रोड पर यदि 3 मिलेंगे जितने 10-20-50 मील में, तो चाय की दुकानें 100 मिलेंगी, तो गाड़ी में पेट्रोल डलाने की कभी दिक्कत आ सकती है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डलाने की कहीं दिक्कत नहीं है। जहाँ गाड़ी खड़ी हो वहाँ चाय वाला चाय 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 चाय, क्यों कोई सामग्री लेके क्यों चलेगा? अब आपको तड़प लग रही है, अब एक कप चाय की व्यवस्था करो तो मालूम पड़ जाए कि चाय एक कप कितनी कठिन है, क्योंकि दूध चाहिए, चाय चाहिए, पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, स्टोव चाहिए जलाने के लिए, नहीं तपेली चाहिए और एक माचिस चाहिए, नहीं जलाएगा कैसे? और वो जलने भी लग गई तो एक छन्नी चाहिए, पीने को कब्बसी चाहिए, कितनी चीजें चाहिए तब एक कप चाय हाथ लगेगी, ख्याल में है ना? तो कितनी पराधीनता है एक कप चाय में सुरेश चंद जी, पसंद है दर्शन? अब यही करना, एक सेकंड में गर्दन झुकाई देख ली नहीं, निगरें झुकाई देख ली नहीं, वह उपयोग को अंदर में झुकाओ, हो तेरा भगवान आत्मा हाजिर हजूर अंदर में विद्यमान है। इसलिए आचार्य कहते हैं विस्मृत तामी कर न्याय ने, निज कर विन्यस्त विस्मृत तामी कर न्याय बले ने, ऐसा भगवान आत्मा की उपलब्धि इतनी सरल है। देखो आचार्य ने जो उदाहरण दिया उसके पीछे क्या रहस्य है, अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं रखा? तुम्हारी मुट्ठी में रख देते सोना तो क्यों? इसको बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलूं बुंदेलखंडी में, इस फ्रेज का अर्थ, कांख में लड़का गांव में तेर, तेर बोले आवाज लगाता बुलाता है, पप्पू पप्पू कहाँ गया मेरा पप्पू, पप्पू कोई आप यहाँ आया है क्या? तेर माने बहुत जोर जोर से आवाज लगाना है ना, कमर में ऐसा माने ऐसा हाथ में लिए, कांख में लड़का गांव में तेर, त्रिकाली तो भगवान आत्मा तेरी कांख में है और गांव में तेल लगा रहा, भगवान भगवान तीन लोक के नाथ, मेरे को सम्मो दर्शन कैसे हुए, कहाँ हुए, क्यों मर रहा है, मेरे हाथ पैर क्यों जोड़ रहा है? ये हाथ पैर जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, हाथ पैर जोड़ने की तेरी जरूरत ही नहीं है, तू अपनी तरफ क्यों नहीं देखता है, मेरी तरफ देख क्यों देखता है? भगवान के सामने जब मंदिर में हम जाते हैं तो मूर्ति भी जो उपदेश दे रही है, क्योंकि मास्टर दो तरह के होते हैं जानते ना, कौन एक तो पढ़ाने वाले मास्टर और एक व्यायाम शिक्षक, ड्रिल टीचर बोलते ना, क्या बोलते हैं ड्रिल मास्टर, दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। वो ड्रिल मास्टर तो बहुत महान आदमी, क्यों कि वो जो लड़कों से करवाना चाहता है वो पहले खुद करके बताता है, तो बाकी के मास्टर तो बच्चों से ही करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं। क्या काम है उसने? यदि वो ये कहता ऐसे हाथ करो तो खुद ऐसे करेगा, ऐसे करो तो खुद ऐसे करेगा, ख्याल में है ना? पहले जो करेगा वो करके तुम्हें करना है, आगे चलता है वो। तो ऐसे ही अरहंत भगवान की प्रतिमा दिल मास्टर है, तो वो तुमको बता रही, तुम उसके सामने के भगवान मुझे आत्मा के अनुभव का क्या उपाय है, तो जवाब दे रही है, क्या बोल रही है कि मेरी तरफ क्या देख रहा है, तो क्या करूं जो मैं कर रहा हूं वो तू कर, कि मैं अपनी तरफ देख रहा हूं तू अपनी तरफ देख, मैं आंखें बंद हूं तू आंखें बंद करना, खोल के क्यों देख रहा, तो मैं जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे? अपनी जो प्रतिमा है वो जवाब दे रही कि नहीं दे रही मुझे बतावा, आंखें बंद करके बैठी है कि तुझे आत्मा का अनुभव करना है कि हाँ करना है, तो मेरा जवाब सुन, दोनों जवाब के दे रहा हूं ना, मौन की भाषा सुन कि जैसे आंखें बंद करके मेरा उपयोग अंतर्मुख है, तू अंतर्मुख उपयोग कर, तेरे को हो जाएगा भैया, क्यों? अकबर ने कहा बीरबल से मूर्ख के सामने क्या करना चाहिए, कि हुजूर साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर खोजने के लिए दो चार महीने लगेंगे और लाख दो लाख का बजट, क्या बजट की क्या कमी है, तुम खोज के लाओ। छह महीने की छुट्टी पे चले गए बीरबल, छह महीने बाद एक बच्चे को ट्रेन करके लाए कि महाराज कुछ भी पूछे चुप रहना, तू कुछ मत बोलना। बोले महाराज आपके प्रश्न का उत्तर ही बच्चा देगा। तो महाराज में क्यों भी बोलो, मूर्ख के सामने क्या करना चाहिए, तो चुप चुप के बोलते ही नहीं है देखो बीरबल, सर जवाब दे रहा है ना, तो क्या जवाब दे रहा है? अरे वो तो प्रैक्टिकल करके बता रहा है आपको, मुँह रखते सामने
समझे ना, चुप रहने, चुप रहने बता रहा है, समझ गए आप क्या? मैं मुंह रखू? आप थोड़ी मुंह रखो, लेकिन वो बता रहा है कि मुंह रख के सामने चुप रहना, तो चुप रहने को वो बोल के कैसे बताए? हम चुप रहने की क्रिया को भी बोल के बताते हैं। आत्मा के अनुभव की क्रिया तो चुप रहने की क्रिया है, उसे बोल के कैसे बताई जा सकती है? उसे चुप रह के ही बताई जाएगी ना। आत्मा के अनुभव की क्रिया तो आंखें बंद कर, आत्मा तो आंखें बंद कर देखने की चीज है, आंखें खोल कर कैसे देखा जा सकता है? तो हमारी बंद आंखें भगवान की ये बताती हैं कि तू मेरी तरफ क्या देखता है। जब तक पर को देखेगा जानेगा, तब तक तेरा आत्मा का दर्शन तुझे नहीं होगा। तो अपनी तरफ देख तो आत्मा का दर्शन हो। तो आंखें बंद करूंगा, खुली रखू भाई साहब? कन्या खुली रखना, बंद कर। भगवान की आंखें कैसी होती है? अपने भगवान की, दिगंबर भगवानों की, चेतंबर भगवानों की तो खुली होती है। अपने भगवानों की कैसी होती है वैद्य जी? बंद कर, खुली ना, खुली ना बंद। क्योंकि बंद आंख आलस की निशानी है, और खुली आंख पर के प्रति सावधानी की निशानी है। खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है, और बंद आंख सो जाने की निशानी है। इसलिए अपने भगवान की आंख अर्धोन्मीलित होती है, ध्यान मुद्रा की आंख। लेकिन जब आंख में से उपयोग हट जाता है और आत्मा आलस में होता नहीं है, तब गारंटी से आंख अर्धोन्मीलित होती है। क्योंकि ये खोलना, फाड़ फाड़ के देखना, ये भी पुरुषार्थ का काम है, और बंद रखना कि दिखना जाए कुछ, ये भी पुरुषार्थ का काम है। तो दो ही काम है, और हमें इस काम से बरी होना है। तो ना हम आंखें नीचे और ना आंखें हम खोलें, वे जैसी हो जैसी रहने दें, उनके बारे में हम सोचें भी नहीं, तो तुम अपने आत्मा में चला जाएगा। तो बोलो भाई साहब, पर को जाने के नहीं जाने? पर को जानना भी पर की तरफ उपयोग को लगाना है, और पर को नहीं जानने का प्रयत्न करना भी पर की तरफ ही उपयोग लगाना है। तो पर के बारे में क्या कहेंगे? कुछ मत करो कि जाने के नहीं जाने, कि न जानो न नहीं जानो। तो फिर क्या होगा? तो होगा तो हो जाएगा, तेरे को क्या लेना देना। कि जानने में आ गए तो आ जान दे, और नहीं आए तो नहीं जान। समझ में आया ना? ऐसी परम उदासीनता पर के प्रति, वो मारक है। बनासी दास ने लिखा है, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। लिखा कि नहीं लिखा? सुख की जो सहेली है वो अकेली एकमात्र उदासीनता है। पर से, पर से हमारे हर तरह से उपेक्षा भाव, उसका नाम ही वास्तव में धर्म है। तो क्या करें? क्यों? आंख से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये हाथ क्या करें? हाथों का क्या करें? अबूलाल जी साहब के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ जैसे भगवान बैठे, तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा? हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा। लेकिन हाथ पे हाथ रखने का अर्थ क्या? क्यों वैद्य जी, आज का धंधा पानी कैसा चल रहा है? तो क्या बताएं पंडित जी, हाथ पे हाथ रखे बैठे। समझ में आ गया कि नहीं? हाथ पे हाथ रखने का मतलब ये है कि सब तरह का धंधा पानी बंद कर दो। क्यों? बाहर के सारे धंधे बंद कर दो, उपयोग को परिभ्रमाओ नहीं, इसका नाम है हाथ पे हाथ रख के बैठना। लेकिन एक ध्यान रखना कि अपने ही हाथ पे रखना। क्या फिर दूसरे के हाथ पे अपना हाथ रखा तो बेटा फंस जाओगे? और एक ध्यान रखना कि अपने हाथ सीधे हाथ पर सीधा हाथ रखना। सीधा माने, सीधा माने दाया बाया नहीं, ये हाथ भी सीधा और इसके ऊपर ये हाथ भी सीधा। ये तो है संसार से छूटने की मुद्रा,
और किसी के सीधे हाथ पर ऊंधा हाथ रख दे। ये पानी ग्रहण है, पानी माने हाथ और ग्रहण, ये तो पकड़े जाने की मुद्रा है, ये तो जीवन भर बंधने की मुद्रा है। दूसरे के हाथ पर हमने हाथ तो रखा और उसके सीधे हाथ पर अपना ऊंधा हाथ रखा और जकड़ के पकड़ लिया, क्यों? लेकिन अदे तुझे आत्मा का कल्याण करना है तो जकड़ने पकड़ने की आदत छोड़, और हाथ पर हाथ मुट्ठी खोल के बंद करके नहीं, नहीं तो अंगूठी फिर अंदर बंद हो जाएगी सोने की। क्या हाथ में हाथ रख, ठीक है, तो पैरों का क्या करूं? के बहुत भागते हैं तो इन्हें ऐसा बांध दे बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में, समझे ना, बिल्कुल ऐसा गांठ लगा दे कस के, जिसमें ये भागना बंद करें, क्योंकि ये पैर भागते हैं उसके पहले मन भागता है, पहले मन भागता है उसके पीछे पैर भागते हैं ना, तो ये भागने का काम बंद कर दे, क्योंकि तेरा भगवान आत्मा यही है, कहीं दूसरी जगह नहीं है जहां जाकर तुझे उसे आत्मा का अनुभव करना है। क्यों? आत्मा का अनुभव करने के लिए कहीं जाना नहीं है, आत्मा में जाया नहीं जा। बोलते बोलते पंडित जी मुझे तो आत्मा में जाना है, मैं कहता तू बेटा आत्मा में कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुझे तो जाना है ना, इसका क्या मतलब है? तू ऐसा मानता है कि तू तो यहां है और तेरा आत्मा वहां होगा, क्यों? तुम तो यहां बैठे हो बीना में और आत्मा होगा इंदौर में, क्यों? श्री नंदन बाबू आत्मा को नहीं छोड़ा है कि यहां लाए हो? नहीं नहीं पंडित जी नहीं लाया हूं, तबीयत खराब है, आत्मा की तबीयत खराब है। तो समझदार जल्दी समझ जाते हैं कि आत्मा माने क्या। जो ये कहता है कि मुझे आत्मा में जाना है, उसने क्या माना? कि आत्मा कहीं दूर है और मैं यहां हूं, और मैं वहां पर जाऊंगा तो आत्मा में पहुंचूंगा, तो चूंकि आत्मा तो तू ही है तो जो जाएंगे वे आत्मा से दूर होते जाएंगे कि आत्मा के नजदीक? बोलो कमल जी, आत्मा तो यही है और जो आत्मा में जाने के लिए जाएंगे चलेंगे तो, लेकिन दूसरी जगह मान लें ना, तो जिन्हें आत्मा में जाना है वे कभी आत्मा में पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा में जाया नहीं जाता, आत्मा में तो आया जाता है। आत्मा तो निज घर है ना, हम तो कबू न निज घर आए, तो अपने घर में जाया जाता है कि अपने घर में आया जाता है? बोलो, जब आप यहां आए थे तो बेटे ने क्या पूछा था कि पापा कब आओगे? ये पूछा था कि कब जाओगे इंदौर, कब जाओगे, ऐसा पूछा। अपने घर में तो आया जाता है, जाया नहीं जाता है, और तुझे अपने घर में आना है ना, तो तू जाने की बात क्यों करता है कि मुझे आत्मा में जाना है? ठीक है ठीक है पंडित, सुधार लिया, अब तो मुझे अपने आत्मा में आना है। कभी तू अपने आत्मा में आ नहीं पाएगा, क्योंकि तू समझता कि आत्मा तो यहां है अपने घर में और तू कहीं बाहर है, फिर तूने आत्मा से दूरी कायम की ना। आत्मा तो तू ही है, दूरी कायम करता है तो आत्मा में कैसे पहुंचेगा? जिन्हें आत्मा में जाना है वे कभी पहुंचेंगे नहीं आत्मा में, और जिन्हें आत्मा में आना है वे कभी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा में जाया आया नहीं जाता है। दो अलग अलग जगह हो तो जाने आने का व्यवहार बने कि ठीक है पंडित जी मुझे तो आत्मा में उतरना है, कि तुझे भी आत्मा में कभी उतर नहीं पाएगा। तू समझता है कि तू तो यहां बैठा है और आत्मा नीचे गड्ढे में तलघर में बैठी है, तो उतर के तुझे आत्मा में जाना है। दूरी हो गई कि नहीं हो गई? आत्मा में उतरने वाले कभी आत्मा में उतर नहीं पाएंगे कि मुझे तो ध्यान में चढ़ना है, कि तू कहीं चढ़ नहीं पाएगा। अगर तू समझता है कि आत्मा तेरा छत पे है तो तू नीचे बैठा तुझे चढ़ना है, दूरी कायम रही ना। आत्मा में जाया नहीं जाता, आत्मा में आया नहीं जाता, आत्मा में चढ़ा नहीं जाता, आत्मा में उतरा नहीं जाता। तो क्या करें हम, मर जाएं? अरे मरने से आत्मा मिलता होता तो तुम एक बार थोड़ी अनंत बार मरे हो, क्यों? और निगोद में तो एक श्वास में 18 बार जन्मे मरे थे, तो मरने से मिलता होता तो वही मिल गया होता। तो क्या करें कि कुछ मत करो, जैन धर्म करने का नाम नहीं है, जैन धर्म नहीं करने का नाम है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव है ना, और स्वभाव को कभी किया नहीं जाता, इसे किया जाए वो स्वभाव नहीं हुआ करता है। अरे आत्मा तो भाई साहब जानने की चीज है, आत्मा को जो जानने की चीज है तूने जाने की चीज मान ली, आने की चीज मान ली, उतरने की चीज मान ली, चढ़ने की चीज मान ली, ये तो सब क्रिया है, समझे ना। ये नहीं, आत्मा तो सिर्फ जानने की चीज है, तो कैसे जाने, खोलने मुट्ठी जान ले, ये तो उदाहरण में मुट्ठी खोलने की बात है, ये तो खुली हुई मुट्ठी में पड़ा हुआ है तेरा सोना, और तू कह रहा है कि मुझे सोना नहीं मिला, मेरी अंगूठी खोगी, मेरी अंगूठी खोगी, मेरी अंगूठी खोगी, मेरी अंगूठी खोगी। बंद मुट्ठी वाला कहे तो क्या गजब है, आज ने तो बंद मुट्ठी का उदाहरण दिया, मैं तो आपने कह रहे खुली मुट्ठी में, खुली मुट्ठी में सोना है, भैया मेरे को अंगूठी नहीं मिली, ये तो रखी, ये रखी, मुझे तो मिल नहीं रही, मुझे तो मिल नहीं रही, तेरे को कभी मिलेगी भी नहीं। क्या शब्द है भैया? तो ना निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामी कर अवलोकन न्यायेन, ये शब्द है। देखो अपने अपन जो पढ़ रहे थे ना, अपना आपके पास जो किताब है उसमें देखो, इसी का जो मैंने लिखा सरल भाषा में, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाने और कारण पाकर स्मरण आने पर प्राप्त करने का उदाहरण देकर आचार्य देव यह समझाना चाहते हैं कि सोना है तो अपने पास ही।